मुंबई का फेमस 7-स्टार होटल मूनलाइट आज पूरी तरह से शांत था, खास तौर पर उसका वीआईपी लॉन सेक्शन, जो आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर था। इस जगह पर सिर्फ वही लोग कदम रख सकते थे जिनका नाम, रसूख और पैसा खुद बोलता था। यहां आमतौर पर हाई प्रोफाइल बिजनेस डील्स, सीक्रेट मीटिंग्स या एक्सक्लूसिव प्राइवेट पार्टियां होती थीं। लेकिन आज ये जगह एक खास डील के लिए पूरी तरह से बुक थी। ये डील इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि किसी तीसरे की परछाई तक मंजूर नहीं थी, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उस वीआईपी लॉन्ज में इस वक्त सिर्फ एक शख्स मौजूद था। ब्लैक 3-पीस सूट में सजा, बालों को परफेक्शन से जेल कर सेट किया गया, गहरी भूरी आंखों पर महंगे ब्लैक शेड्स, कलाई पर ब्रांडेड वॉच जो दूर से अपनी कीमत बयां कर रही थी। बूट्स ऐसे चमक रहे थे मानो अभी ही इंटरनेशनल शोरूम से सीधे निकले हों। 6 फीट की हाइट, दूध सा साफ रंग और उस पर चाकोल ब्लैक कपड़ों का तीखा कॉन्ट्रास्ट मानो क्लास, पावर और कातिलाना लुक की चलती फिरती मिसाल हो। उसकी फिजिक एकदम सिनेमैटिक परफेक्शन, चौड़ा सीना, मस्कुलर बॉडी, 8-पैक एब्स और चेहरे पर ऐसा तेज जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। ये था कायरा फ्राईचंद, रेचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO। 18 की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाले कायरव ने सिर्फ 7 साल में अपनी कंपनी को देश की टॉप इंडस्ट्रीज में शामिल कर दिया था। पिछले 5 सालों से वो बेस्ट यंग टैलेंट, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड अपने नाम करता रहा था। आज देश भर में उनके लग्जरी होटल्स, क्लब्स, रिजॉर्ट, लॉन्च, लग्जरी विला और मॉल्स की चेन है, और अगला कदम ग्लोबल एक्सपेंशन। लड़कियों के बीच वो एक क्रश नहीं, क्रेज था। इंडियाज मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर था वो, जो अपने लुक्स, पर्सनैलिटी और कातिलाना अंदाज से लड़कियों के दिल पर राज करता था। लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ एक मिस्ट्री थी, न कोई गॉसिप, न कोई स्कैंडल। अवार्ड्स लेने भी वो खुद नहीं जाता, उसकी जगह उसका असिस्टेंट और बचपन का दोस्त नितिन जाता है। कायरव एक बंद किताब था जिसे पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। फिलहाल कायरव, जो जल्दी से किसी बिजनेस डील के लिए खुद नहीं जाता, वो आज यहाँ अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट डील फाइनल करने खुद आया था। और वक्त का पाबंद कायरव, जिसका एक एक सेकेंड बहुत कीमती था, वो पिछले आधे घंटे से किसी का इंतजार कर रहा था। एक बार फिर बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहलते हुए कायरव की नज़र एंट्रेंस पर पड़ी। फिर उसने तीखी नज़रें अपनी कलाई पर मौजूद वॉच पर डाली। इसके साथ ही एक मिश्री सी मीठी, हड़बड़ाई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। सॉरी 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 सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। निकली तो मैं टाइम पर ही थी, पर लगता है आज पूरी मुंबई गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल गई है, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग गया। कायरव ने अपनी आंखों पर से शेड्स हटाते हुए नजरें आवाज की दिशा में घुमाई। सामने से एक 22-23 साल की लड़की दौड़ती चली आ रही थी। उस लड़की का ध्यान सामने की जगह नीचे फ्लोर की तरफ था। ये थी इनाया देशमुख, चलते फिरते तूफान का दूसरा नाम। कायरव की नजरें भी इनाया के पैरों की तरफ चली गई। उसके पैरों में मामूली सी सैंडल थी जो भागने की वजह से टूट गई थी और मिट्टी और कीचड़ से सनी थी, जिससे उस चमचमाते फर्श पर उसके सैंडल के निशान बनते जा रहे थे। ये देखकर कायरव की भौंहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गई और माथे पर कुछ लकीरें खिंच गईं। लेकिन इनाया को इस बात का होश ही नहीं था, या शायद ये बात उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। जैसे तैसे वो जल्दी जल्दी चलते हुए आगे बढ़ रही थी और ध्यान तो सैंडल में ही उलझा हुआ था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने सामने की ओर नजरें उठाई और जैसे ही उसकी नजरें कायरव पर पड़ी, उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए, आंखें आश्चर्य से फैल गईं और मुंह से हैरानगी से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहते ही इनाया के चेहरे के भाव बदल गए। उसने आंखें छोटी छोटी करके कायरव को घूरा। कहीं तुम मेरा पीछा करते करते तो यहाँ नहीं पहुंच गए? देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ कि उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम ही इतनी स्पीड में गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहे थे जैसे सड़क तुम्हारे बाप की हो। अब जब सड़कों पर हवा की स्पीड में गाड़ी दौड़ाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। मैंने तो फिर भी इंसानियत के नाते तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया था और तुम्हारे इलाज के पैसे भी भर दिए थे। पता भी है तुम्हें, उस दिन तुम्हारी वजह से मेरे पूरे 5,000 रुपये खर्च हो गए थे। वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो, जाने दो, किसी का भला हो जाएगा तो पुण्य ही मिलेगा मुझे। और क्या पता उस नेकी के बदले कृष्ण कन्हैया मुझ पर थोड़ी दया दिखा दे और मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। जॉब तो मिली नहीं, तुम जरूर मिल गए, पर इस बार मैं एक पैसा नहीं देने वाली तुम्हें। गलती तुम्हारी थी तो हर जाना भला मैं क्यों भरूं, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो पतली गली से खिसक लो। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़े, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। इनाया एक बार शुरू हुई तो रेडियो की तरह नॉनस्टॉप बजती ही चली गई। पता नहीं किस मुलाकात की बात कर रही थी वो, क्या हुआ था उस मुलाकात में। कायरव उसकी बातें सुनकर पहले तो हैरान परेशान सा उसे देखता ही रह गया। आखिर इनाया कौन सी दुनिया से आई एलियन है और क्या क्या बकवास किए जा रही है। लेकिन जैसे ही इनाया ने पुलिस की बात छेड़ते हुए धमकी दी, कायरव के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने इनाया को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, तमीज से बात करो मुझसे।
अभी उसने इतना कहा ही था कि इनाया ने उसकी बात काटते हुए उसी के लहजे में जवाब दिया, क्यों क्यों करूं तमीज से बात, तुम क्या कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? इनाया आंखें चढ़ाए उसे घूरने लगी और उसके सामने एकदम निडर और निर्भीक होकर तनकर खड़ी हो गई। कायरफ का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने खा जाने वाली नजरों से घूरकर उसे देखा, फिर गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोला, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, पर जिस जगह अभी तुम खड़ी होकर इतनी जुबान चला रही हो ना, उस जगह का ओनर हूँ मैं, और जिसके एक कॉल पर उससे मिलने तुम दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई हो वो शख्स हूँ मैं। कायरफ ने जैसे ही ये कहा, इनाया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तुम कायरव रायचंद हो, जिसके असिस्टेंट ने मुझे यहाँ फ़ोन करके जॉब के सिलसिले में बुलाया था? इनाया ने किसी तरह अटकते अटकते कायरव से सवाल किया और अविश्वास भली नज़रों से उसे देखने लगी। कायरव ने उसका सवाल सुना और एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, यस, मैं ही कायरव रायचंद हूँ, वही कायरव रायचंद जिसका कुछ दिन पहले तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो गया था, वही कायरव रायचंद जिसके असिस्टेंट के कॉल पर तुम जॉब के लिए यहाँ आई हो और यहाँ आकर तुम मुझसे ही इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। कायरव का जवाब सुनकर इनाया के तो चेहरे का रंग उड़ गया, काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया था उसका। वो फटी आंखों से शॉक से उसे देखती ही रह गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये बदतमीज लड़का द ग्रेट कायरव रायचंद नहीं हो सकता, ये जरूर डुप्लीकेट माल है जो मुझे बेवकूफ बनाने यहाँ आया है, इनाया खुद में बड़बड़ाई, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कायरव के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, झूठ बोल रहे हो तुम कायरव रायचंद हो ही नहीं सकते, कहाँ वो इतने बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और कहाँ तुम्हें तो ठीक से कार भी चलानी नहीं आती, इतनी बड़ी रायचंद इंडस्ट्री का खाक संभालोगे? मैं सब समझ रही हूँ, तुम डुप्लीकेट कायरव रायचंद हो और मुझे बेवकूफ बनाकर अपना बदला पूरा करना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ, मैं पहचान गई हूँ, तुम एक फ्रॉड आदमी हो जो ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी बदलकर लोगों का फायदा उठाता है। कायरव उसका कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था। कायरव ने अजीब नजरों से उसे देखा, फिर उसने इनाया के इल्जामों को इग्नोर करते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाला, फोन में कुछ टाइप किया और स्क्रीन इनाया की तरफ घुमा दी। इनाया जो अब तक कायरव को घूर रही थी, उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, खुद देख लो रियल कायरव रायचंद को।
कायरव ने एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। इनाया की नजर अब फोन स्क्रीन पर पड़ी। गूगल में कायरव रायचंद सर्च किया हुआ था, जिसके नीचे एक हैंडसम से लड़के की फोटो थी और साथ ही उसके बारे में लिखा हुआ भी था। इनाया ने पहले स्क्रीन पर दिखती फोटो को देखा, फिर सामने खड़े कायरव को। इनाया का पूरा बदन जैसे जम गया हो। जिस लड़के को अब तक डुप्लीकेट माल कह रही थी, वही उसका नया बॉस था, द रियल कायरव रायचंद। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लगी आपको मेरी इस न्यू स्टोरी की शुरुआत? ये स्टोरी रैपिड कॉम्पिटिशन के लिए लिख रही हूँ, तो स्टोरी के पार्ट जल्दी जल्दी आएंगे, चाहे तो पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।